मैं चाहता हूं कि आप अपने बेटे से बात करें। मैं चाहता हूं आप उस पर जोर दें कि वो सच बताए। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं।
क्यों? आप क्यों उसकी मदद करना चाहते हैं?
मैं आपके बेटे के चेहरे की जगह एक ऐसे इंसान को देख रहा हूं।
मैं सच बता चुका हूं।
लेकिन सब कुछ नहीं। उस रात हबीब के घर से कितने बजे गए थे?
10 बजे।
कहां?
घर पर।
लेकिन तुम्हारी अम्मी कह रही हैं कि 11:15 बजे घर पहुंचे थे।
नहीं तो?
क्यों नहीं? अगर आपको याद हो तो मैंने पूछा कितने बजे आया था, आपने कहा था कि 11:15 बजे। अगर आपको याद हो तो पूछा था यकीन है, आपने कहा जी क्योंकि घड़ी देखी थी। ठीक कह रहा हूँ?
बहुत साल पहले एक झूठ बोला था सिर्फ अपने भाई की खातिर। काफी सालों से उस झूठ का बदला देती आ रही हूं मैं। आज एक और झूठ बोल दिया है मैंने अपने बेटे की खातिर।
यकीन नहीं कर रही ना कि मैंने हबीब को नहीं मारा है?
फिर किसने मारा है उसे?
आप पहले यकीन करें कि उसे मैंने नहीं मारा, फिर बाद में कातिल को तलाश करें।
तमाम गवाहों सबूतों के तहत हम तुम्हें मुलजिम समझ रहे हैं रुतबारी, और तुम कहना चाह रहे हो कि तुम वहां से वापस चले गए थे और उस रात तुम उससे मिले ही नहीं और घर चले गए थे। ये जो जख्म तुम्हारे जिस्म और सर पर लगे हैं, ये सारे जख्म तुम्हारे एक्सीडेंट के हैं। इसी तरह की कुछ और बातें करोगे और यहां से चले जाओगे। ऐसा नहीं है लड़के, जाओ जाके कुछ अच्छा सोचो, फिर हम दोनों बात करेंगे।
तुम्हारा अभी मुझसे मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है। अगर नाजगुल से भी चाहो तो, अगर कोई भी फैसला कर लोगे तो हम इस फैसले को मान लेंगे। मोहसिन तुम्हारा रिश्ता लेकर आया और मैंने मंजूर कर लिया, सिर्फ यही। बस अभी उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है और अभी वो तुम्हारा शौहर भी नहीं है। मिठाई खाना और ये मंगनी वगैरह को मैं नहीं मानती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसको हमारे इस मामले में कभी भी नहीं लेकर आओगी, समझी तुम?
खुदा उस कातिल को जलील करे।
ये कौन?
इसके कातिल को माफ नहीं।
वो बरजू कमाली है, दुकानदार है, उसके बराबर में मिर्जा है।
आपको लगता है ये मोहम्मद ने किया है?
नहीं मालूम।
वही जो तदफीन के वक्त बहुत दुआएं कर रहा था।
झूठ बोल रहा है सर, ये नहीं, वो मजलिस में नहीं था। वो मजलिस में ही था, वो हबीब को देखकर उससे मिला भी, लेकिन माफी मांगने और माफ कर देने की कोई बात नहीं हुई थी।
बस फिर ठीक है, उस बरजू को हमारे पास ले आओ, शायद वो कुछ भूल गया था, अब बता देगा।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
करबलाई नहीं आए क्या?
आज नहीं आएंगे।
मुझे बस उनसे ये पूछना था कि उनका कोई जानने वाला वकील है या?
मेरे बाबा किसी वकील को नहीं जानते और वकला से उनका कोई ताल्लुक नहीं।
शुक्रिया।
सुनिए मोहतरमा, मेरे वालिद को अपने मामलात में मत लेकर आए, मेहरबानी होगी।
मुझे कोई काम नहीं उनसे, सिर्फ पूछ रही थी।
क्यों नहीं, काम है। आज वकील चाहिए, कल जमानत चाहिए होगी और परसों फिर यकीनन गवाही देनी होगी। आपके बेटे ने एक शख्स को कत्ल किया है मैडम, वो भी एक मुसीबत के मारे को, जो कुछ नहीं करता था, अंधेरे में अपने घर में पड़ा रहता था। इस शहर के तमाम लोगों के दिल नफरत से भर चुके हैं। अच्छा, आपको किस चीज की उम्मीद है? इस काम में मेरे बाबा आपकी क्या मदद करेंगे? आप मेरे बाबा को बीच में मत लाएं। अगर आपको वकील चाहिए तो इस शहर में भरे पड़े हैं, जहां भी नजर उठा के देखेंगे वकील का ऑफिस मौजूद होगा। इसमें किसी की सिफारिश नहीं चाहिए।
खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम बाजी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
कुछ हुआ है क्या बाजी?
नहीं, कुछ नहीं हुआ
बाजी।
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. معاف کیجیے گا.
کوئی بات نہیں, میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا, بس صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے ایک وکیل تلاش کر لیا ہے, بہت نامور وکیل ہے, آج دوپہر میں اس کے آفس جانا ہوگا.
شکریہ.
یہ میرا فرض تھا. آپ عدالت چلنا چاہیں گے کیا؟ شاید آج آپ کو اس سے ملنے دیں.
ٹھیک ہے,
چلیے پھر.
محمد رتباری, محمد رتباری.
جی بولیں.
رتباری صاحب, اسے لا رہے ہیں. محترم, اگر برا نہ مانے تو انہیں بات کرنے دیجیے, یہ ان کی والدہ ہیں.
اجازت نہیں ہے.
محمد سنیے جناب.
ضد نہیں کریں محترمہ.
ایک منٹ رک جائیے.
میں نہیں کروا سکتا,
مجھے بات کرنی ہے.
میں آپ سے کہہ چکا ہوں
جناب, مجھے صرف ایک منٹ بات کرنی ہے.
مجھے اجازت نہیں ہے, آپ ضد نہیں
کیجیے. اگر رک جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟
معاف کیجیے گا محترمہ.
محمد بیٹا, تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں.
نہ آئے
محمد. بیٹا تمہارے لیے وکیل کر لیا ہے.
پلیز پیچھے نہ آئیے.
میں اس سے بات کروں گی, تم پریشان نہیں ہونا, تمہیں کچھ نہیں ہوگا.
اس کی ہتھکڑی کھول دو.
جی سر.
تم باہر چلے جاؤ.
سر ملزم کی والدہ باہر کھڑی ہیں, کچھ دیر آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں.
انہیں اندر بھیج دو.
ٹھیک ہے سر.
بیٹھو.
آ جائیے محترمہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترمہ.
میرے بیٹے تم ٹھیک ہو نا؟
چلیے بیٹھ جائیے, تم بھی بیٹھ جاؤ. کل رات اچھی طرح نیند آئی کیا؟
جی تھوڑی سی.
لیکن میرے ساتھی اچھی طرح نہیں سو سکے ہیں, کل رات سے اس وقت تک وہ لوگ جاگ رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک بے گناہ اس جرم کی سزا جیل میں گزارے. کل رات اصلی قاتل کو گرفتار کر لیا ہے. برزو نام کے لڑکے کو جانتے ہو کیا؟ اس نے تمہارے دوست کو مارا ہے. جانتا ہوں کہ ان کچھ دنوں میں تم نے بھی اور تمہارے گھر والوں نے بھی بہت مشکل وقت گزارا ہوگا. افسوس کے ساتھ ہم ثبوتوں کی بنا پر تمہاری طرف متوجہ ہو گئے تھے. بہرحال مجھے خوشی ہے میرے ساتھیوں نے محنت کر کے تمہاری بے گناہی ثابت کر دی.
تو اب میں جا سکتا ہوں؟
ہاں تم جا سکتے ہو رتباری. مہربانی ہوگی ہمیں اگر معاف کر دو گے تو خوشی ملے گی. ہمارا فرض ہے, ہمیں فرض نبھانا ہوتا ہے.
آپ سے شکایت نہیں. جب میری والدہ نے مجھ پر یقین نہیں کیا تو دوسروں سے میں کیا توقع رکھ سکتا ہوں؟
آپ کی والدہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے رتباری, تمام ثبوت اور شواہد تمہاری طرف تھے.
میں جا سکتا ہوں کیا؟
ہاں تم اب جا سکتے ہو.
میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی بیٹا.
نہیں میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں.
Thank you. अंदर क्यों नहीं आ रहा है?
मुझे क्या मालूम, जब से आया है बारिश में बैठा हुआ है। चाय नहीं पी इसने?
नहीं।
लाओ मैं लेकर जाऊं। ये लो मोहम्मद चाय। इन दो दिनों में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बाहर जाने की, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट ले आती, लेकिन अभी कुछ बाकी है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ।
क्या हुआ?
बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा।
हाँ, उसकी हालत ठीक नहीं है।
हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दावत में नहीं गया था, जेल गया था। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। आजकल मेरा दिमाग भी बारिश की तरह हो गया है, पता नहीं कब काम करता है कब नहीं। मोहम्मद बेटा, अपनी चाय लो।
पता नहीं अब उसके दोनों बहन भाई का क्या होगा।
उन दोनों की तबीयत ठीक है, उन्हें चाइल्ड केयर ले गए थे, वहां उनका अच्छा ख्याल रखा जाएगा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए थे?
मैं अकेला रहना चाहता था।
तुमने ऑफिसर के सामने ये क्यों कहा कि मेरी मां ने मुझ पर भरोसा नहीं किया?
क्या आपने भरोसा किया था? जब उस दिन सिपाही हमारे घर आए थे, जब आपने मुझे बताया था, उस वक्त आपकी आंखों में मैंने देखा, मैं लरस गया था, बहुत घबरा गया था। आपकी आंखें बता रही थी कि हबीब का कातिल मैं ही हूं।
मुझे भी अचानक एक झटका सा लगा था। दरअसल
आपको लग रहा था कि यह सब मैंने किया है, आपकी आंखें साफ बता रही थी कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं।
जब भी खाना खाना चाहो, खाना तैयार है। कल हम साथ चलेंगे मंसूरी साहब की दुकान पर, कुछ अपने कपड़े खरीद लेना। और
मैं कल यहां से चला जाऊंगा।
चले जाओगे? कहां चले जाओगे?
ऐसी जगह चला जाऊंगा जिसकी छत यहां से ऊंची होगी।
जिंदगी को आखिर खराब करना चाहते हो? तुम क्यों हम सबके दिल को दुखी कर रहे हो?
बाबा ने कहा सिर्फ आज का दिन है।
हाँ,
उस वक्त सब कुछ खत्म हो गया था। मैं सिर्फ तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी का रास्ता चुन लिया, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं मौत का रास्ता चुन सकता हूँ। वो तो मुझे अपनी मर्जी से चुनने दो।
मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं।
सताईश, हुआ क्या है आखिर? क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? अब क्या मेरी बात भी नहीं सुनोगी?
नहीं जाने दूंगी, कभी भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों जाओगे तुम?
मैं कुछ साबित करने के लिए यहां से जाना चाहता हूं। सताईश, सताइश
क्या है?
मेरी तरफ देखो, मेरा जाना मुश्किल मत करो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई खुद के लिए कुछ करे, कुछ बन जाए? इसीलिए जा रहा हूं।
यानी हम सब जो यहाँ पर है वो इंसान नहीं है ना? नहीं है।
मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, और एक दिन तुम देखोगी मैं किसी काबिल हो गया हूं। जैसा तुम कहोगी वैसा ही, क्या कहती हो?
तो तुम यहां पर रहकर भी तो सब कुछ कर सकते हो।
दोबारा घर जाने से पहले अपने आंसू साफ कर लो। मुस्कुराओ सताइश, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। वही अपनी प्यारी सी हंसी, ये बनावटी हंसी नहीं। तुम मेरी हिम्मत मत तोड़ो।
सब कुछ माजी की तरह दोबारा हो रहा है। खुदाया, अब बर्दाश्त नहीं होगा दोबारा से वही बातें।
क्या बात दोबारा मीजा? मैं तो पहली दफा ये बात कर रहा हूं, पहली दफा यहां से जाने की बात कर रहा हूं मीजा।
जानती हूं,
अम्मी जान, अम्मी जान, आपको खुदा का वास्ता मुझे मत रोके। मैं अगर यहां रुक गया तो खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा।
तुम कब जाओगे?
कल सुबह। क्या है?
कुछ नहीं। अम्मी आप जूस पियेंगी, लेकर आ जाऊं?
नहीं मेरी बेटी, जाओ मोहम्मद की सर्दी के कुछ कपड़े ले आओ। तुम्हारी स्कूटर मैं स्टोर में रख दूंगी।
अब मुझे जरूरत नहीं है, उसे बेच दे। जब भी आपके पास आऊंगा अपनी कार में आऊंगा।
तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा?
एक महीने की छुट्टी ले लूंगा, मेरा काम सेट हो गया तो वहां ट्रांसफर करवा लूंगा।
तो क्या नौकरी ढूंढ चुके हो तुम?
जी अम्मी जान।
क्या नौकरी है?
नौकरी अच्छी है, उसमें मुस्तकबिल भी है।
क्या नौकरी है?
ऐसी नौकरी है जो ऐसी नौकरी है जो मेरी पढ़ाई से ताल्लुक रखती है। एक शख्स है, वही जिसके लिए मैं मछली लेकर गया था, उसे मेरा काम अच्छा लगा। उन्होंने कहा तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा है। कह रहे थे आज के जमाने में काबिल लड़के कम ही मिलते हैं, और मैं उन्हीं काबिल लड़कों में से हूं। अम्मी जान, मुझे यकीन है कि 6 महीने में ही उनका पार्टनर बन जाऊंगा।
मोहम्मद, पूछ रही हूं क्या काम है?
मेरा काम एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखता है। फ्रूट खरीदने के लिए सही तरह से इन्वेस्टमेंट करना, खरीदो फरोख्त, खर्च, एग्रीमेंट, इन सब पर एग्रीकल्चर के रूल लागू करना। क्या बताऊं अम्मी जान, आप क्या चाहती हैं? 4 साल की पढ़ाई 1 मिनट में समझा दूं? वो मेरी महारत से फायदा उठाना चाहते हैं बस।
अच्छा, जो आदमी तुम्हें ये काम दे रहा है वो कौन है?
आप उन्हें नहीं जानती हैं अम्मी जान, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है, दिल का अच्छा है, बहुत बड़ा आदमी है।
मार्केट या मंडी में होता है?
वो खुद मार्केट का मालिक है, उसका काम बहुत जबरदस्त है।
अपने बारे में मुझे इत्तला देते रहोगे?
हर सांस की, एक एक मिनट की। मैं कोई मरीख पर थोड़ी जा रहा हूं। अच्छा जरा एक मिनट रुके, मैं आपकी एक तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लेता हूं, जब भी आपकी याद आएगी देख लूंगा। एक मिनट रुके।
जरूरत नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
अरे रुके ना एक मिनट। ठीक है।
दरवाजे तक साथ चलूंगी।
तो फिर खड़ी क्यों है? चलिए।
चलो अब रोना नहीं शुरू कर देना।
इसका चेहरा ही ऐसा है।
याद रखना एक बात, तुम वहां नौकरी के लिए जा रहे हो, ना किसी और काम के लिए। याद रखना कि मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा यहां इंतजार कर रहे हैं।
मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा अम्मी जान,
लेकिन जा तो रहे हो।
तुम मेरी हिम्मत मत तोड़ो।
तुम मुझे फोन तो करोगे ना?
हाँ क्यों नहीं।
कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ हो। तुम इस घर के अभी अकेले मर्द हो। अपना बहुत ख्याल रखना।
अम्मी जान आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
अम्मी बस भी करें, इतना जज्बाती नहीं करें।
लाओ मुझे दो। एक दफा और।
ये मेरी भरपूर हिफाजत के लिए।
मेरे सामने दुआ करो।
किस चीज की दुआ अम्मी?
तुम यहां से नेक काम के लिए जा रहे हो, दुआ करो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए।
ठीक है।
ऊंचा बोलो ताकि मैं भी सुन सकूं।
अम्मी जान दुआ दिल में ही की जाती है।
आहिस्ता नहीं बोलो, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दुनिया को कुछ बन के दिखाओगे?
हाँ बिल्कुल।
यही अपने रब से मांगो।
अल्लाह मदद फरमाता कि दुनिया को कुछ बन के दिखा सकूं।
आमीन।
कुर्बान चाचा जाकर दरवाजा खोलें।
वाह भाई वाह, तुम फिर आ गए। कोई भी नहीं है, सब तेहरान चले गए हैं। तुम्हें क्या चाहिए अब?
उनका एड्रेस चाहिए मुझे।
वो नामुमकिन है, मुझे इजाजत नहीं है। साहब का एड्रेस तुम्हें क्यों चाहिए?
उन्होंने मुझे काम देने का कहा था। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो एड्रेस लेना भूल गया था। झूठ नहीं बोल रहा हूं, अपने बेटे की तरह समझे।
साहब को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें एड्रेस दिया है।
कभी भी नहीं।
सुनो, सोचता था जब मैं बूढ़ा बेबस और लाचार हो जाऊंगा तो तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन वो सब मेरी गलत फहमी थी ना। तुम क्यों चली गई आती? तुम ऐसा तो नहीं समझती थी कि मैं दो चार पैसे जमा करने के लिए इतनी मेहनत करता हूं? मैं ऐसा नहीं था, जो कुछ कमाता था तुम्हें लाकर देता था। समझी, ऐसा नहीं था मैं। तुम्हें लगता है मैं झूठा हूं? मुझे यहां चोट लगी है, दिल जलता है मेरा। मैं एक कारोबारी आदमी हूं, जो चीज चाहता हूं खरीद लेता हूं और जो चीज खरीदता हूं उसके बदले कुछ दे देता हूं। मगर मुझसे तुम दोनों जुदा हो गए हो, उसका बदला क्या है?
मुझे क्या मालूम उन्हें क्या काम है। सुबह से अब तक चार दफा फोन कर चुके हैं, रट लगाए हुए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे शहर के एक कोने से दूसरे कोने में बुला लिया है। अच्छा, अब किस लिए बुलाया है खुदा जानता है। ठीक है, हाँ मैं तुम्हें फोन करता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज।
आ जाओ अंदर।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जान।
वालेकुम अस्सलाम। बैठो, तुमसे काम है।
मुझे जल्दी जाना होगा बाबा जान, सब काम छोड़कर आया हूं। जलील हो गया था इतनी ट्रैफिक में, पूरा शहर गाड़ियों को कब्रिस्तान बन गया। 1.5 घंटे से मैं रस्ते में हूं बाबा जान। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी ही थी तो कल रात को घर पर कर लेते, या आज रात पर छोड़ देते। आपको तो नहीं मालूम कि मैं आज कितना मसरूफ हूं। पैकिंग का कारखाना कब्रिस में है, सब कारीगरों ने स्ट्राइक कर दी है, सारे फ्रूट गोदाम में रखे हुए। हमारी पार्टी अमारात में बैठी है, जितना भी माल भेजा है उसने एतराज किया है, कहता है देर से पहुंचा है, यहां पर मार्केट बंद पड़ी है। अब मैं अकेला आदमी।
इसे भी अपने अधूरे कामों में याद रखो, 68,000 रुपए की रसीदें जुर्माने के साथ अदा नहीं हुई हैं, और ये पिछले साल का है। इंश्योरेंस के पैसे जुर्माने के साथ हैं, ये भी अदा नहीं किए गए हैं। उस शॉपिंग मॉल का एग्रीमेंट जो बल्दिया के साथ शुरू किया गया था, इसमें लिखना था कि खरीद लें या बेच दें, या फिर उनसे एक एग्रीमेंट कर लें। 1 साल गुजर गया है। देखो साबिर, अगर उन्होंने खाली करने का ऑर्डर कर दिया तो हर हाल में खाली करना पड़ेगा। इतना शोर कर रहे हो, काम काम काम। क्या काम करते हो तुम? तुम्हें कहा था यहां आ जाओ, यहां का काम संभाल लो। अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, हमें मॉडर्न होना चाहिए, जमाने के साथ होना चाहिए। अपने ऑफिस को भी एक मॉडर्न ऑफिस बना दिया ताकि कामयाब हो सको। हो गए कामयाब? कामयाब होके क्या सब अदायगियां कर दी? कामयाब हो गए तो क्या इंश्योरेंस की अदायगी कर दी? कामयाब हो गए तो लोगों को बताना ही भूल गए कि किस तरह काम होता है।
मुझे तो दस्तखत करने का इख्तियार भी नहीं है, ये तो आप खुद ही।
लानत हो मुझ पर। मैं अब ये नहीं कर सकता कि यहां से वहां, वहां से यहां आता रहूं। 50 साल से भाग रहा हूं मैं, एक बोझ भी तुम हल्का नहीं कर सकते। मैं अब थक चुका हूं साबिर।
मैं तो कहता हूं बाबा जान, आती मरुमा के चैलों के बाद आप कहीं जियारत पर चले।
गाड़ी की तरह हो चुका हूं, वॉशर चल गए हैं, ऑयल खत्म हो चुका है। अब तो इस काबिल भी नहीं कि जियारतों पर जाकर अपने गुनाह माफ करा सकूं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। मेरा हाल तो अब कबाड़ में पड़ी गाड़ी की तरह हो गया है।
आप कहें तो कंपनी के वकील को बेच दूं?
नहीं, जरूरत नहीं है। कल खुद अदालत चले जाओ और एक वकालतनामा अपने नाम का बनवा लो। मैं वहां आकर दस्तखत कर दूंगा। थक चुका हूं बिल्कुल, एक मजदूर की तरह इधर से उधर भागा जा रहा हूं।
ठीक है बाबा जान, कोई और काम तो नहीं है?
नहीं। साबिर।
जी बाबा जान।
वो लड़कों के इंश्योरेंस का मामला जल्द से जल्द हल करवाओ। कुछ लड़के डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बुक की तारीख खत्म हो चुकी है।
कौन, रुस्तम?
हाँ, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है।
वो तो पिछले साल प्रेग्नेंट थी, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ।
अच्छा, मतलब वो मुझे बेवकूफ बना रहा है?
पता नहीं,
बुलाओ उसको, मैं पूछता हूं उससे।
रुस्तम, रुस्तम,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, जरा यहां तो आओ। तुम्हारी बीवी पिछले साल भी तो प्रेग्नेंट थी ना?
जी जनाब।
तो फिर क्या दोबारा से हो गई है?
जी प्रेग्नेंट है जनाब, वो तो 10 महीने पहले की बात है।
अच्छा, तुम्हारी बीवी 10 माह पहले प्रेग्नेंट थी, अब दोबारा से हो गई है?
बिल्कुल जनाब, बच्चों की पैदाइश पे कोई टैक्स तो नहीं लगता ना सर, ये तो अल्लाह की देन है।
हाँ है। साबिर।
जी बाबा जान।
सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले इसके इंश्योरेंस का काम होना चाहिए।
खुदा आपकी उम्र दराज।
ठीक है बाबा जान,
कोई और हुक्म मेरे लिए सर?
नहीं, खुदा तुम्हें और हिम्मत।
अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा आपको खुश रखे, शुक्रिया।
साबिर
जी बोले।
रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। जुमे को आती का चहलम है, 600 अफराद के बैठने के लिए मैंने शफी से इंतजाम के लिए कह दिया है। तमाम लड़कों को काम पर लगा दो ताकि घर सेट हो जाए। हर टेबल पर 4 कुर्सियां लगवाना और उस पर फ्रूट रख देना ज्यादा से ज्यादा।
40वें के लिए फ्रूट?
तो क्या हुआ, फ्रूट है, फ्रूट का गम या खुशी से क्या ताल्लुक?
और वो भी 600 अफराद के लिए।
मुझे 600 लोगों की फिक्र नहीं, उसने अपनी जिंदगी में दुखी लोगों की दिल खोल कर मदद की है। और मेरे दिल की हसियत यह है कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूं उसके चहलम पर कर दूं। हाशिम के रेस्टोरेंट से 600 बंदों के खाने का इंतजाम करवा दो। बस एक बात का ख्याल रखना, कोई चीज भी कम ना पड़े।
ठीक है बाबा जान।
सैयद
जी साहब,
ऊपर जाओ और मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ।
ठीक है साहब। वो लड़का आपसे मिलना चाहता है साहब, वो
वहां देने में क्या कर रहे हो? यहां आओ मेरे पास।
अस्सलामु अलैकुम जनाब।
अरे वाह, तुम आए हो माहिर लड़के।